آیت کے آخری حصے کو اگر ہم دیکھیں اور کچھ اگلی آیتوں کو بھی ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ان ساری آیات کا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے, اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پیچھے بات ہوئی قبول کرنے کی, کوئی بھی دعوت ہو, قرآن کی دعوت ہے تو قبول کر لو, جہاد کی دعوت ہے تو قبول کر لو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت ہے تو قبول کر لو, اسلامی طرز زندگی اپنانے کی دعوت ہے تو قبول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبول نہ کیا یا تھوڑی سی پسو پیش کی تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, پھر اللہ آنے نہیں دے گا, مان لو اس سے پہلے کہ ماننے کی صلاحیت چھن جائے, کام کر لو اس سے پہلے کہ حالات ناسازگار ہو جائیں. ہم میں سے ہر ایک انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, ایک لمحے میں دلوں کو بدل دیتا ہے. دل ہلتا ہے تو محبت والا دل نفرت میں, اور نفرت والا دل محبت میں بدل جاتا ہے. وہ دل جو نیکیوں کے ارادے کر رہا ہوتا ہے وہ انہی ارادوں سے روکنے والا بن جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک خطرے میں ہے, اور وہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستوں پہ نکلتے ہیں اصل میں وہ تکلیفوں کے جنگل میں سے گزرتے ہیں, اور انہی تکلیفوں کے جنگل کے بالکل بیچوں بیچ میں جنت پڑی ہے. اللہ نے جنت کو مشکل چیزوں سے گھیر دیا. شیطان جب ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم نیکی کا کوئی ارادہ کرنے لگے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ہمیں روکنے کے لیے جتنے ہم اس کام کو کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے لیکن ابھی کیا نہیں, شیطان بھلوا دیتا ہے, ارادے کمزور کروا دیتا ہے, کچھ اور چیزوں کو سامنے لا کر اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ دنیا ایک میگنیفائنگ گلاس کی صورت میں ہمارے سامنے اتنی بڑی بن کے آ جاتی ہے کہ آخرت اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. آخرت آج بھی موجود ہے لیکن دنیا سامنے اتنی بڑی ہو گئی. کرنا کیا ہے؟ اس دنیا کے شیشے کو چھوٹا کرنا ہے. یہ وہ شیشہ ہے جو صدقہ نہیں کرنے دیتا, جو وقت نہیں لگانے دیتا, جو سکلز نہیں لگانے دیتا, جو صبحوں کو اٹھنے نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو وارن کرتے ہیں کہ مت سوچو کہ تم بچ گئے, تم ابھی پورے نہیں بچے, اس لیے کہ ابھی تم زندہ ہو اور تمہارا دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, جس نے یہ وعدے کیے تھے کہ میں نے تو اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہنا ہے. غنیمت جانو, نیکی کا موقع آ گیا خوش قسمتی سمجھو, آنے والا فقیر جو در پہ تمہارے صدا لگاتا ہے اس کو دھتکارو نہیں, وہ تو تمہارے لیے نیکی کی ایک کال لے کر آیا تھا. تمہیں کوئی دین کی دعوت دیتا ہے, کوئی فلائر دیتا ہے, کوئی بات بتاتا ہے, شکر کرو, اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ تم نے مجھے ایک بار پھر شعور کا موقع دیا. نہ آؤں آؤں الگ بات ہے, لیکن ایک دفعہ تم نے پھر میرے دماغ کے اندر ایک پتھر تو پھینکا کہ میں کہاں ہوں, مجھے آنا ہے, مجھے ضرورت ہے. تو جب ایک انسان کہتا رہتا ہے اور دوسرا بندہ اس کا مکمل انکار کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کو خود بخود ملامت شروع ہو جاتی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب پھر آؤ گے بھی تو آنے نہیں دیا جائے گا اور وہ تمہاری موت کا وقت ہے. ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, جب چاہے حائل ہو جائے. دیکھیے لوگوں کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, آپ کھلے عام جاتے ہیں آتے ہیں, لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے چیک لگا دیتے ہیں. آپ کریں وہ کہیں گے نہیں پاسورڈ چاہیے. آپ روم میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, آپ پرانا پاسپورٹ لگا رہے تھے پتہ چلا چینج کر دیا. جس کی چیز ہے اس کی مرضی. آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں, آپ باہر سے لاک لگا دیں, گھر موجود ہے, دروازہ بھی موجود ہے, آپ نے لاک کر دیا. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ تعالی لگا دیتا ہے. یہ ہوتا کیسے ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اللہ تعالی پہلے بندے کو موقع دیتا ہے, کوئی خبر اس تک پہنچ جاتی ہے نیکی کی. اب ہوتا ہے کہ بندہ خواہش کرتا ہے, پھر تمنا میں ڈھلتی ہے وہ خواہش, نیت بھی کر لیتا ہے لیکن ابھی کام نہیں شروع کرتا, یا وہ برائی چھوڑتا نہیں. پھر اللہ ایک مہلت دیتا ہے. کس چیز کی مہلت ہوتی ہے یہ؟ ارادہ کر لو, کر لو. सीरियस हो जाओ। इस मोहलत के दौर में अगर कोई बंदा इरादा करके कोशिश ना शुरू करे तो मोहलत का वक्त ख़त्म और फिर अल्लाह हायल हो जाता है। एक वक्त ये होता है कि इंसान आता नहीं और फिर एक वक्त वो आ जाता है कि अल्लाह आने नहीं देता कि तुम इस काबिल नहीं कि तुम इस बात के लिए बैठो, तुम ये बात कहो, तुम्हारी ज़ुबान नापाक है जो लोगों को अच्छी बातें कहती है और ख़ुद अच्छे नहीं करते काम, आराम से बैठो, खामोश रहो। कभी उसको बोलने की तौफीक ख़त्म हो जाती है और कभी उसके सुनने वाले नहीं आते, फिर वो कहते हैं लोग आते ही नहीं, सुनते नहीं। असल में अल्लाह हायल हो गया। आप गुनाह वाली ज़ुबान, आप बेअमली वाली ज़ुबान, आप हराम वाली ज़ुबान से लोगों को दीन की तरफ बुला रहे थे, या तो तौफीक आपकी छिनेगी या लोग ही नहीं आएंगे। और तीसरी भी एक और रुकावट होती है कि आप गले फाड़ते रहे, लोगों को आपकी बात का ज़रा बराबर असर नहीं होगा। ये सारे अल्लाह के रुकावट बनने के तरीके होते हैं। कुछ भी हो, असल बात यह है कि अल्लाह ताला रुकावट डालता है, सुस्ती डाल देगा, ये सुस्ती भी रुकावट होती है। नींद डाल देगा, इतनी गहरी नींद कर देगा आपको खबर ही नहीं होगी, ये अल्लाह आपके लिए हायल हो गया। आप देखिए कि कुरान पढ़ते पढ़ते एक बंदा कहता है कि बस अब मैं थक गया, अब मैं और स्ट्रगल नहीं कर सकता, मेरे ऊपर रुकावट आ गई। क्या ये रुकावट आ जाई? नहीं, ये तो पहले दिन से ही थी। क्या घर वाले आज ना खुश हुए? नहीं, ये तो शुरू से ही थे। आज क्यों आप रुके कुरान से? इसलिए कि आज आपके अंदर सुस्ती आ गई, आपके अंदर एक वायरस आ गया। कोई अपने आप को महफूज ना समझे, दसवीं सीढ़ी से भी गिर सकता है इंसान। पहली से गिरता है कम चोट लगती है, दसवीं से गिरता है ज़्यादा चोट लगती है। और मैंने तो लोगों को बीसवीं सीढ़ी के बाद भी गिरते देखा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। जितना ऊपर जाके गिरेंगे उतनी मुँह की खाएंगे, ठोकर पड़ती है फिर उठ नहीं पाता। फिर ऐसा बंदा कितना अरसा कुरान की तरफ आता ही नहीं, एक जगह छोड़ता है तो ये नहीं कि दूसरी तरफ चल पड़ेगा। फिर शैतान तसलियां देता है कि ठहर जाओ ज़रा, पहले घर वालों को तो खुश कर लो, पहले रुके हुए काम कर लो। और होते होते कैफियत क्या है कि अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी। कभी भी नेकी की कोई तौफीक छीने ना तो खून के आंसू बहा सकें तो बहाएं। हार्ट अटैक हो जाए उससे तो हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हो जाए। जब जिंदगी में कोई नेकी का काम करते करते आपसे छिन जाए, वट एवर रीज़न, कोई पाबंदी, कोई तरगीब, कोई तरहीब, कोई लालच, कोई जॉब, कोई काम, कोई पैसा, कोई बच्चा, कोई कुछ, बंदे मोमिन की ज़िंदगी में ये हो ही नहीं सकता कि उसका दिल नेकी के काम से हट जाए। क्योंकि पहले बंदा हटता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल हट जाता है। इसीलिए यहाँ वाला मुँह का लफ्ज़ भी लगा दिया। उसको पता है कि दिलों में क्या तूफान बरपा है। कुछ रोक लिए जाते हैं, कुछ मजबूर कर दिए जाते हैं, लेकिन दूर रह के भी उनके दिल वहाँ होते हैं। काम ना करके भी वो करने वालों में होते हैं। हज़रत उस्मान तबूक के सफ़र में नहीं थे, बदर के सफ़र में नहीं थे, लेकिन उनका दिल उनके साथ था। क्यों? कि मजबूरी ने उनको रोका। तो अल्लाह की इस दुनिया में हर काम सबब के ज़रिए होता है, तो आखरत भी काम करने से होगी। इसके लिए सबब करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक वक्त आएगा कि जब लोग चाहेंगे भी तो नहीं आ सकेंगे। एक रिवायत में आता है, किसी ने आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके लाए हुए दीन पर अमल किया, हाँ आप या हम इससे फिर जाएंगे कभी? कभी ऐसा हो सकता ही नहीं। सहाबा कराम ऐसी आयतों को सुन के कहते थे, इज़ इट पॉसिबल? अल्लाह के नबी जो एक दफ़ा इस कुरान को देख ले, जो अल्लाह के नबी के तरीकों, इन सुन्नतों को देख ले, क्या ये पॉसिबल है? तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि दिल अल्लाह की चुटकियों के दरमियान में है। हर एक अपने आप से पूछ ले, किस हाल में मरना चाहती हूँ? क्या सिर्फ हालात की नासाजगारी का रोना रहूँगी? दुनिया के नफ़े नुकसान पर तोलूँगी? इसलिए जो दिलों में होता है उसी के मुताबिक तौफीक मिलती है। जिस चीज़ पे आप सोच में पड़ गए आप वो काम नहीं करेंगे। लिख ले। जो ये कह के आता है ना कि अच्छा मैं ज़रा पूछ के आती हूँ, किसी दुकान पे आप खड़े हो, जो लेने वाली खातून होगी फ़ौरन ले लेगी, और जो ये कहेगी ना अच्छा ज़रा मियाँ से पूछा हूँ, तो बस समझ जाते हैं दुकानदार कि अब ये नहीं आएगी। कौन आने देगा कि इतने पैसे दो और फिर एक जोड़ा खरीदो और जेवर खरीदो? तो वहाँ तो चंद पैसे हैं, चले वही कपड़ा जेवर पहन के दिखाएंगे, शायद खुशी से कोई मान जाए। और जब कोई ये मांगेगा इजाज़त, ये बात करेगा कि मुझे एक ऐसा रास्ता चुनना जिसमें मैं आपको अवेलेबल भी कम हो, कुछ खर्चा भी आएगा, कुछ किताबें भी लेनी पड़ेंगी, कुछ मंथली फीस भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे आपसे इख्तलाफात भी महसूस होंगे जो ज़िंदगी पहले गुजर रही थी उसमें, तो अब कई जम्स दिखने लग गए, कौन आने देगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे वक्तों में क्या करो, वअन्नहु इलैहि तुहशरून, ये याद रखो कि आना उसी की तरफ है। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि यहाँ जो पीछे हमने बात की थी ना कि नबी सल्लम ने जब पुकारा तो वो ना आए, और बाद में आपने कहा, इसी तरह माँ बाप, उस्ताद और बुजुर्गों, इन तीन के बारे में भी आता है कि नफली नमाज तोड़कर भी इनकी तरफ आ सकते हैं। जुरैज का वाक्या मशहूर है जो पीछे भी जिक्र हुआ था कि नमाज की हालत में 3 दफ़ा उसकी माँ ने पुकारा और वो ना आए, तो माँ ने बददुआ दे दी कि तुम्हें मौत ना आए जब तक कि तुम किसी फाहिश औरत का मुंह ना देखो, और फिर वाकई उन पर जिना का इल्ज़ाम लगा, वाक्या पीछे हो चुका है। तो ज़रूरत है ना, क्यों भला? इसकी वजह आप कहेंगे ये तो ज्यादती, हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के लिए खड़े थे, अब आगे नहीं। पहली बात यह कि सुन्नतें थी, नफिल थे। दूसरी बात है कि अब माँ नींद छोड़ के बच्चे की तरफ नहीं आती, सोती माँ उठ जाती है जब बच्चा रोता है। क्या बुजुर्गों के एहसानात नहीं होते? और क्या उस्ताद का दर्द, उस्ताद की मेहनत ये इस काबिल नहीं कि हम अपने नफिल को छोड़कर आ जाएं? तो इसमें इंशाल्लाह जो मसला है अमल का वो यही है कि फर्ज तो नहीं छोड़ेंगे। बस माँ को आदत ही होती है, हर वक्त बोलती रहती हैं, हो ना घर में, हाँ कोई नाम दिया तुम इधर ही हो ना, है वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई शऊर से बुलाए, उसको पता है आप नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी वो बुलाए, तो फिर सुन्नत या नफिल तोड़ के करी जा सकता है। बाद में फिर आपका दिल चाहे तो वो नफिल अदा कर लें, सुन्नत ही तो उसको दोबारा से आप अदा करेंगे। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, ना मान के जाना किधर है, आखिर तो आओगे उसी की तरफ, मानते क्यों नहीं हो? कभी आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा, ये हमारी ज़मीन जो है ना, ये हम सबको खींचती है। हम जो खड़े रहते हैं ना सीधे, हालांकि हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसके बावजूद हम गिरते नहीं, इसकी वजह ग्रेविटी है। दरख्त से फल टूटता है तो ज़मीन पे क्यों गिरता है, आसमान पे क्यों नहीं जाता? ग्रेविटी की तरह बिल्कुल, अन्ना हो जाएगी तो शरून, ऐसी लग रहा है कि जैसे ग्रेविटी, तुम सब ने आना अल्लाह की तरफ है, भाग के कहीं नहीं जा सकते। और क्या करो, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, और डरते रहो उस फितने से जो अगर बर्पा हो गया तो न सिर्फ के पहुंचेगा वो जालिमों को खास तौर पर, यानी सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा बल्कि हर एक को मिलेगा, खासो आम को वो पहुंच जाएगा। और जान लो, वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। आप देख रहे हैं कि पीछे गजवे बदर की तफसीलात, आगे फिर वही बातें, बीच में नसीहतें हैं। अल्लाह ताला ने इन नसीहतों में एक बहुत बड़े फितने से इंसान को डराया। अब वो फितना कौन सा है? वत्तकू फितनतन, लफ्ज़ फितने को तो हम बहुत दफ़ा देख चुके, पीछे भी आजमाइश को भी कहते हैं, लेकिन रिवायात से जो चीज़ पता चलती है कि यहाँ फितने से मुराद है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का छोड़ना। जब अपने सामने बुरे काम होते देखें और ना रोकें ना रुकें, तो ये फितना है। इस वक्त इसी फितने का शिकार तो इंसानियत हुई भी दिखती है। दिखते हैं आपको फितने? हम कहते हैं ये फितनों का दौर है, वजह क्या हुई? क्या एकदम हो गया घर गंदा? नहीं, जब गंदा होना शुरू हुआ तो साफ नहीं किया। तो जब लोग बुराई को देखें और उसको साफ करने की कोशिश ना करें, तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है, ना रोकने वालों पे भी और ना रुकने वालों पे, फिर सारे दर्द सहते हैं। ये ऐसी है कि जैसे यहाँ कोई थोड़ी सी गंदगी रख दे तो रखने वाले को भी बदबू आएगी, लेकिन जो बेचारों ने नहीं रखी उनको भी उस बदबू को सूंघना पड़ेगा। तो बुराइयाँ, गुनाह जो होते हैं, ये गंदगी होते हैं, और अल्लाह ताला ने इसी की बात की। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है, कि जो लोग अल्लाह ताला की कानूनी हदों को तोड़ने वाले हैं वो गुनाहगार हैं, और जो लोग इनको देखकर सुस्ती करते हैं यानी मुदाहनत करते हैं बावजूद कुदरत के उनको गुनाह से नहीं रोकते, तो इन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे कुछ लोग बहरी जहाज में सवार हों। दो तबके हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। नीचे वाले जो हैं वो ऊपर वालों से पानी लेने आते हैं, क्योंकि अमूमन पानी का स्टोरेज ऊपर ही होता है, जिससे ऊपर वाले तकलीफ महसूस करते हैं कि बार बार तुम आ जाते हो हमें तंग करने के लिए। अब नीचे वाले जब ये देखते हैं कि हमारा आना इनको पसंद नहीं आता, तो फिर वो क्या करते हैं कि नीचे से समंदर से पानी लेने की कोशिश में कश्ती में एक सुराख करना चाहते हैं। अब अगर इस सुराख के दौरान ऊपर वालों ने आकर इनको ना रोका तो क्या होगा? सारी की सारी कश्ती डूब जाएगी। बिल्कुल इस वक्त इंसानियत का यही हाल है कि इस वक्त इंसानियत की कश्ती नस्लों की नस्लें डूबती भी महसूस होती हैं, और उसकी वजह कि लोगों ने आपस के इख्तलाफात को तो हवा दी। लोगों ने नमाज में रफुल जदैन करने और ना करने को बुनियाद बना के तबलीग का सारा रुख तो उधर मोड़ दिया। छोटी छोटी फिकही बातों को इतना बड़ा इशू बना लिया कि हलाल और हराम का इशू बन गया। लोगों को परखने का मेयार सिर्फ चंद फिकही बातें हो गईं, उसके बाद दिल ही नहीं जमता कि वो बात भी कोई ठीक होगी नहीं होगी। और बुराइयां फैले तो फैल रही हैं, गुनाह हो रहे हैं तो हो रहे हैं, सोच बदल गई तो बदल गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी जगह समंदर का पानी आना शुरू हो जाए और कोई बंद ना बांधे, तो थोड़ी सी देर गुजरेगी कि सारी की सारी बस्ती जो है वो पानी के अंदर बह जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला क्या बनाना चाहता है कि वो खुद गर्ज ना हो। मुसलमान मुआशरे खुद गर्ज नहीं होते। अगर कोई माँ ये कहे कि मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती, आज के दौर का ये रिवाज है, बच्चों को कुछ ना करो, लेट देम डिसाइड देम सेल्फ, वो खुद ही अपनी जिंदगी के फैसले करें, ये जुल्म है। फिर वो फितने आएंगे कि जिसका शिकार माँ नहीं उसकी बुरी नस्ल हो जाएगी। तकवा इंसान को इतना हसास बना देता है कि अपनी बुराइयों को तो महसूस करता ही है, दूसरों की बुराइयों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वसवसे तक महसूस हो जाते हैं कि ये सोच बदल रही है। बच्चों की आंखों से पता चल जाता है, उनके खड़े होने, बोलने, बैठने, चलने फिरने से पता चलता है कि अब कुछ बात गड़बड़ शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ अंदर फितना आ चुका है। चुखन्ना हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, मसलन आप चूंकि यहाँ हम बात करें ना बुराई की और भलाई की, तो आप देखिए कि ये सफाई के नाते से देख लें, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता गंदगी है कहाँ, और कुछ लोगों को चादर पे एक सलवट भी पड़ी होती है तो वो भी चुभती है, कुर्सी टेढ़ी है तो उनको चुभती है, कारपेट की धजियां बाहर फैली हैं तो चुभती हैं, और कुछ को पता ही नहीं चलता। इतने प्यार से, इतने दिल से, मेहनत से क्लीनिंग करके क्लीनिंग स्टाफ सारा फैला हुआ छोड़ देंगे, सारा कारपेट सजा हुआ है, साफ सुथरा है, ऊपर कुर्सियां टेढ़ी हैं, नहीं पता चलता ना। बिल्कुल इसी तरह लोगों को बुराई और भलाई का फर्क भी नहीं पता चलता। कौन सी चीज है जो इंसान को कॉन्शियस करती है? तकवा। मुत्तकी जो होता है वो बुराई का सेंसर होता है। आपने देखे होंगे कि जहां सेंसर्स होते हैं ना वो एकदम बजने लगते हैं, तो तकवा एक सेंसर है। जहां बुराई देखी वो जलता बुझना शुरू हो जाता है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है, बाज़ आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और शैतान इस तरीके से आता है इंसान के पास कि बंदे को पहले से पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंदर आ गई। करना क्या है? कोशिश करनी है। आप देखिए कि सारा मुआशरा गंदा है, हम साफ कैसे रहेंगे? कोशिश करें। आपने तालाब में खिले हुए कमल के फूल कभी देखे होंगे। आपने मैंने कमल का पहला वो फूल बनना है जो गंदगी के जोहड़ में खिलेगा। चारों तरफ गंदगी होती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हैं? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, कुछ इस किस्म का शेर है। अब इंसानियत रो रही है, हजारों साल हो गए इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को रोते धोते। इस वक्त जरूरत है कि लोग उठें, अमर बिल मारूफ को अपनी जिंदगी का शार समझें, और हकीकत यह है कि जो बंदा इस काम के लिए उठता है शैतान को वो सबसे बुरा लगता है। जलजला आता है, सैलाब आते हैं, सब हलाक हो जाते हैं, उनके भी घर नहीं बचते जिनके घर पक्के थे। बिल्कुल इसी तरह जब बुराइयां होती हैं, गंदगी होती है, खराबी आती है, तो वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनतें की होती हैं अपनी औलादों के साथ, उनकी भी नस्लों पर कुछ ना कुछ पानी तो चढ़ ही जाता है, कुछ ना कुछ रंग तो आ ही जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि इस हिस्से में इंसान अपना काम डाले। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी गंदगी बढ़ती है उतनी लोगों में बेहिसी भी बढ़ती है। जब लोग कहते हैं ज़रूरत क्या है, जब कोई आपसे कहे कि क्या ज़रूरत है इस तरह औरतों के सीखने सिखाने की, तो आप समझ लें कि इसकी गंदगी की सेंस ख़त्म हो गई। बातों से कभी भी चेंज नहीं आती, सिर्फ तनकीद करके तकरीरें करके वाज करके महफिलों को गर्मा देने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि बाज दफा बुराइयों को हाईलाइट करने से वो भी बुराइयां पता चल जाती हैं लोगों को जो आम लोगों को नहीं पता होती। क्योंकि मैंने देखा है बाज उलमा का काम ही क्या होता है, उलमा नहीं बल्कि मुबल्लिगीन कहूंगी, यानी बाज मुबल्लिगीन की पूरी स्पीच में मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसकी बातें होती हैं, वहां ये हो गया वो हो गया ये इस मुल्क में ये हो गया, और एंड पे बस रेमेडी कोई नहीं होती, लोग वहीं हैंगिंग अराउंड होते हैं और चल पड़ते हैं, कोई पैकेज नहीं कोई कुछ नहीं। एक ऐसा ही मौका कहीं था तो कोई मुबल्लिग थे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया और दावत दी कि बुराइयों से और बच्चों को भी रोकें, लाइक एंड दिस एंड दैट। लोगों ने बड़े अच्छे प्यार से उनको बुलाया, इख्तमाम किया, दिस एंड दैट जो भी होता है ऐसे मौक़ों पे मोहब्बत से, क्योंकि जब कोई बाहर से आता है तो हकीकत में लोग बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और आने वाले भी दिल खोल के आ जाते हैं। उसी मौके पे उन्हीं अरेंजमेंट करने वालों से एक रिक्वेस्ट की गई कि जहां आप लोगों ने जिस शहर में इनको बुलाया तो वहीं अगले ही दिन कोई वहां प्रोग्राम है या उसी के करीब कुरान की बाकायदा तालीम का आगाज़ हो रहा है तो ये अनाउंस करवा दीजिए। मैं हैरान होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे दो चेहरे हैं, वल्लाहु आलम, कोई किसी के लिए बदनीयती बदगुमानी नहीं, लेकिन मैंने देखा जिन मेंबरों पे इतने जोश व खरोश से बुराइयों को डिस्कस किया जाता है, जहाँ अपने गुण गाए जाते हैं, जब उनको एक छोटा सा ऐलान करने को कहा जाता है तो वो नहीं करते। फिर उसके बाद बाद में एक बात निकली कि कुछ लोगों ने फ्लायर बांटे हैं या पता नहीं सीडीज दी हैं, तो वो जहाँ भी थे हम लोग तो बात पहुँची मेरे तक भी, फिर हमने उसके जवाब में उनसे बात की कि हमने तो आपको पहले से ये दिया हुआ था और हमने किसी को नहीं कहा दें, अगर कोई खुद आया हुआ और वो बता दे कोई बात को रहा तो क्या बुरी बात है, यानी कोई हराम चीज़ की बात कर दी है किसी ने कि भाई कुरान का कोर्स शुरू हो रहा है तो आप शुरू आ जाएँ या क्लास हो रही है तो आप आ जाएँ। मैं सोचती हूँ कि हम क्यों ऐसे काम करते हैं, रूह नहीं है, हम सिर्फ महफिलें बर्पा करना चाहते हैं। और मुझे उस वक्त इतना दुख आया, मुझे लगा कि इतने लोग आए हुए हैं जो कोई एक ऐलान कोई एक चार लफ्ज की बात कह दे कि लोगों औरतों बेटियों बहनों भाइयों जो भी आए हुए हो इन सारी बातों का हल क्या कि एक दफ़ा कुरान पढ़ो। मैंने कहने वालों से भी नहीं सुनी ये बात, बुलाने वालों की तो छोड़ दें। ऐसे लगता है कि सिर्फ रस्म का नाम दीन रह गया, कभी तब्दीली नहीं आएगी। फिर बाद में एक जगह मुझे एक माँ मिली तो किसी जगह कोर्स में आने लग गई तो कहने लगी कि म्यूज़िक पे बात कीजिएगा, बच्चों को बताएं कुरान पढ़ाते हुए। मैंने कहा क्यों? कहने लगी फ़लाँ मौके पे एक आलिम आए थे, उन्होंने म्यूज़िक पे बात की थी तो मेरे बच्चों ने डर के दो चार दिन के लिए म्यूज़िक छोड़ दिया, अब फिर शुरू हो गए सुनना। अब वो बेचारे तो कह के उन्होंने कहा लोगों ने सुना, लेकिन जब तक पानी नहीं पड़ता रहेगा दिल कैसे नरम होगा। मुझे उस माँ पे भी रहम आया। तो बात यह है कि ये खेलते कूदते करने वाले काम नहीं होते, ये सिर्फ एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस सजा लें और 10 बार आलिम बुला लें और उनके से सारी सारे मौजूदात पे बातचीत कर लें, ये कोई टाइम पास वक्त चीज़ नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं कि हम ये पूरा कुरान, माशाल्लाह आप देखिए कि दौरे कुरान में हमने पूरा कुरान किया, कुछ दिल खुले ना, पूरा सुना ना, 30 दिन में सुना, उसके बाद और दिल चाह रहा है खुलने को, सुनने को दिल चाह रहा है। मुसलसल बारिश पड़ती है तो बंदे के दिल के ऊपर असर होता है, और जब ये चीज़ छूट जाती है ना तो फिर फितने ही फितने हैं। और यहाँ आप देखिए कि जो फितने को नहीं रोकता ना वो असल में खुद भी फितने में मुब्तला हो चुका होता है। मुझे ऐसे लगता है कि सीखना सिखाना इसका तरीका जो है ना ये डॉक्टर और मरीज़ वाला काम है। एक हल्का सा तकाबुल आपके सामने रखती हूँ, अपने नोट्स में बीच में एक लाइन लगा लें कि एक ये फितना, फितने को आप कह लें कि बीमारी फैली हुई है, कोई भी इन्फ्लुएंजा है, वायरस फैल गया, स्टमक की बीमारी, कोई डायरिया की बीमारी, आप फितने मुख्तलिफ किस्म के लिख लें। और उसके वक्त पे अमूमन क्या होता है, डॉक्टर्स को बुलाते हैं ना लोग, बिल्कुल इसी तरह एक सच्चा दाइये दीन, एक कुरान की तालीम देने वाला भी डॉक्टर या तबीब होता है। मसलन आप देखिए दोनों का तकाबुल हम करेंगे कि आप डॉक्टर बनते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको पढ़ना पड़ता है ना, प्री मेडिकल, मेडिकल, FSC, फिर 4-6 साल वो, फिर उसके बाद हाउस जॉब, तकरीबन 10 साल लग जाते हैं मैट्रिक के बाद से मेडिकल के सिर्फ बेसिक करने में। चलिए आप इस मुआशरे के फितने दूर करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, जिसका जो दिल जाए उठ के बोलना शुरू हो जाए, क्या मुझे दर्स करना आ गया, मैं दर्स दे रहा हूँ, 4 लफ्ज़ अरबी के आ गए या मैं तजवीद पढ़ाऊँ, वल्लाही मैंने पढ़ने पढ़ाने वालों को देखा है कि उनको भी जरूरत है कुरान पढ़ने की, और ये शोशा शैतान दिल में डाल देता है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो खुद पढ़ा रही हो, और तुम वहां पढ़ने चले गई जहां कोई वो भी लोग आ रहे हैं जिनको तुम पढ़ा रहे हो, तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे लो हमारी तो अपनी उस्ताद जहाँ आती हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, हमेशा की इंसान अपने आप को खाली रख ले और सीखने से पीछे हो जाए। छोटी छोटी आप कह सकते हैं कि इंसान अपने दीन के नाम पे छोटी छोटी कोशिशें करता है, जब उसको बड़ी कोशिश का मौका मिले तो पीछे हट जाए, ये सिर्फ अपना नाम और अपनी जात तो नहीं रहती। तो जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, इस वक्त ज़रूरत है ऐसे ही दीनी डॉक्टर तैयार करने की, ऐसे मेडिकल इदारे कायम हो। मेडिकल कॉलेजेस देखे होंगे आपने शहरों में, कितनी बड़ी बड़ी कितने मीलों की बिल्डिंग है। जब तक हमारे इस माशरे में दीन के नाम के लिए, दीन सीखने सिखाने के लिए ऐसे इदारे, ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने चलाने रूल्स के साथ करने वाले इदारे नहीं होंगे, कहाँ से उस्ताद निकलेंगे। आपने दिया क्या, मुझे किसी की बात बड़ी अच्छी लगती है, वो मुझसे अक्सर ये बात पूछते, बल्कि मेरी ही बात है कि किसी भी जगह मैं जाऊँ गई तो मुझे वो कहते हैं कि ये बताओ कि तुम वहाँ कितने साल रही, इतने साल रही, ये नहीं पूछते कितनों को पढ़ाया, वो कहते हैं ये बताओ कि तुमने आगे कितने टीचर तैयार किए। क्यों, कि जब तुम वहां नहीं रहोगी तो आगे कितने लोग हैं, टीचर से मरा ये कि कितने लोग हैं जो आगे उस काम को बढ़ाने वाले। इससे पता चलता है ना कि आप काम जो करते हैं उसका आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है। आप सारी जिंदगी इधर उधर सुने उधर सुने इधर सुने, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली दीन नहीं सिखा सकते जब तक आप सर्टिफाइड टीचर ना हो, यहाँ तो सर्टिफिकेशन का दौर ही बहुत है। बहरहाल फिर आप देखिए कि जब पढ़ते हैं तो उस दौरान सब चीज़ों से कटना पड़ता है ना स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो क्या दीन सीखने वाले को एक खास हद तक कट ऑफ नहीं करना चाहिए, ये ना करेंगे तो जुल्म करेंगे। आप अपने आने वाले मरीजों पे जुल्म कर रहे हैं छुट्टियां करके और सीरियस ना होके, और आप उनका हक मार रहे हैं जिन्होंने कल आप पे बड़ी लंबी उम्मीदें लगानी है। अगर आपको चार लफ्ज़ अच्छे बोलने आगे, लोग कहेंगे आप बहुत अच्छी टीचर हैं, पढ़ाने बैठेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस दिन छुट्टी की थी, इस दिन ये कमी की थी, तर्जमा नहीं सही याद किया था, तजवीद पे मेहनत नहीं की थी, और मैंने हदीस के सबक का तो ऐसे ही खेल समझ लिया। उस दिन फिर अपनी कमियाँ पता चलती हैं इंसान को, लेकिन फिर बंदा पलटना चाहे भी तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या डॉक्टर्स के लिए सिलेबस की ज़रूरत होती है, सिलेबस की बुक्स तो होती हैं उसके साथ एक्स्ट्रा बुक्स, मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की जो बुक्स होती हैं उससे कई गुना एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, एक्स्ट्रा बुक्स होती है जिनको पढ़नी पड़ती हैं। तो इसी तरह आप इस तरफ दीन के डॉक्टर को देख लें तो क्या उसको बुक्स की ज़रूरत नहीं, क्या उसको एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखिए कि डॉक्टर बनने के बाद फिर प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं, वर्कशॉप्स कह लें, उनको पोस्टमार्टम करके दिखाया जाता है, हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह दीन के आलिम को अगर लेके जाना है तो दीन सीखना है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। मैं कह सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, जिसको कहते हैं ना कि डॉक्टर बनने के दौरान प्रैक्टिस शुरू की। हर जगह मैं अपनी टीचर के साथ जाती थी जहाँ मुझे मौका मिलता था, और मैं देखती थी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे वो टैकल करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, और उससे फिर एकदम जैसे कहते हैं ना चीज़ आगे बढ़ने की, बंदे में जुरत भी आ जाती है और कॉन्फिडेंस भी बनता है। अगर आप देखें कि दीन के लिए हम ये सारी कुर्बानियाँ नहीं दे सकते तो फिर टीचर कल कैसे तैयार होंगे, फिर कैसे लोग आगे आएंगे। बाज़ लोग भूख बर्दाश्त करते हैं, नींद बर्दाश्त करते हैं, कॉफ़ी पी पी के बीमार हो जाते हैं लोग मेडिकल के जब पेपर होने वाले होते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन जाना है और पेपर देना है। फिर इसी तरह आप देखते जाएं कि हर फील्ड का डॉक्टर फ़र्क होता है। इस तरह इस वक्त आप सब कुरान सीख रहे हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जब आपके अगले स्टेप्स आएंगे, अगले मिनी कोर्सेज होंगे, उसमें आप अलग अलग होते जाएंगे। कोई तजवीज़ स्पेशलिस्ट होंगे, कोई तफसीर की तरफ चले जाएंगे, कोई मैनेजमेंट में चले जाएंगे, कोई कुछ, ये काम करके होते हैं, ऐसे नहीं होता। लोग कई के साल पढ़ते हैं, फिर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, फिर हाउस जॉब करते हैं, फिर शुरू में उनको गांव देहातों में दूर लगा दिया जाता है कि ज़रा जाएं घर से दूर और वहां सीखें, फिर कहीं काम होता है। फिर इसके बाद असल चीज़ें जब डॉक्टर बनते हैं फिर उसके बाद भी आप तकाबुल कर सकते हैं। बिल्कुल आप सोच से करें, डॉक्टर के लिए क्या होता है कि वो हमदर्द हो, दीन वाले को हमदर्द होना पड़ेगा। सख्त हाथ से इंजेक्शन डॉक्टर लगाए तो दूसरे लोग उसके पास नहीं जाते, इस तरह दीन वाले को भी नरम हाथ से इंजेक्शन लगाने चाहिए। टॉन्टिंग और तनकीदी बातें करेगा अच्छा नहीं होगा। फिर आप देखिए कि मुस्कुराता हुआ हो, सख्त गिर ना हो डॉक्टर, कमिटमेंट के साथ हो, बाज़ दफ़ा ऑन कॉल रहना पड़ता है, आधी आधी रात को पेशेंट्स आ जाते हैं उनको डील करें, कभी दीन वाले के पास भी कोई आ जाए बात सुनने तो वो इस ये ना सोच ले कि इसने मुझे डिस्टर्ब क्यों कर दिया, नहीं शुक्र करे अल्लाह का कि मेरे पास कोई फ़न है कोई स्किल है तभी तो कोई मुझसे सवाल पूछने आया है। फिर आप देखिए बाज़ इमरजेंसी होते हैं तो सारी रूटीन बदल जाती है, कहीं की छुट्टियां मनसूख हो जाती हैं, कभी कहीं वबा फूट गई कहीं सैलाब आ गया सारे डॉक्टर्स को वहां जाना पड़ता है। तो बस आप यही समझ लीजिए कि अल्लाह ताला यहाँ वत्तकु फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम खासा में एक वार्निंग दे रहे हैं, और वो क्या कि अगर तुमने बाहर के डॉक्टर जिस्मानी डॉक्टर तो बहुत बनवा लिए बन भी गए लेकिन अगर दीन के डॉक्टर्स ना बन सके तो ऐसी वबाएं फैलेंगी कि उसके अंदर क्या कुछ बह जाएगा। अल्लाह अकबर। थोड़े इल्म पर लोगों को जख्मी करना है, नीम हकीम खतरा ईमान की जो बात सुनी है वो बिल्कुल सच है, कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। इस तरह थोड़ा सा इल्म सीख के जब हम चल पड़ते हैं ना आगे तो बहुत खराबी करते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि कहत पड़ा हुआ है। किस चीज़ का? कुर्बानी देने वालों का। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस काम के लिए चुन ले। अब देखिए डॉक्टर जाते गंदी जगहों पे, मुंह पे मास्क लगाएंगे कुछ भी करेंगे सबको मना करेंगे इस एरिए में ना हो जरासीम फैला है, लेकिन डॉक्टर वहीं जाएगा। इस तरह दीन वाले को भी अपने आप को वहीं लेके जाना चाहिए जहां उसकी ज़रूरत है। सिर्फ पंप एंड शो और ग्लैमर का नाम दीन नहीं है कि आप बाहर बोर्ड लगा के अपना ऑफिस बना के बैठ गए, नहीं आप वो काम करेंगे जहां पे हकीकत में ज़रूरत है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा रूहानी मुआलिज, हमारे यहाँ क्या तसव्वुर आता है रूहानी मुआलिज का, चले जाएं तो वहाँ कोई चार छः लाइनें लगा के आपका इलाज कर रहे होंगे, तवीज़ बना देंगे बत्तियाँ बना के कहेंगे इसको गले में लटका लें और पता नहीं क्या अजीबो गरीब चीज़ें, लेकिन असल जो चीज़ है वो इस दीन से मिलती है और इन फितनों से अपने आप को बचाना है। फिर इसी तरह आप जब इसको देखेंगे तो जब इस जगह इनकार होता है, आप गौर से देखें इस बात को कि जब इस जगह पे काम नहीं करते ना लोग अमर बिल मारूफ व नहीं निल मुनकर पे, तो फिर इसके बाद जंगें भी भुगतनी पड़ती हैं। क्यों भला? इस वक्त दुनिया में जितनी जंगें लगी हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ उसकी वजह भला क्या है कि वो जो जुल्म कर रहे हैं उन तक दीन नहीं पहुंचा। जालिमों के हाथ कौन पकड़ेगा जब उसको खुद भी पकड़ना आएगा ना, तो जब पहला दरवाज़ा खुल जाता है ना तो फिर ये फितना अगला फितना जिहाद का फितना बन जाता है। इसीलिए इसकी दूसरी फितने की तफसीर की जाती है तरके जिहाद, क्योंकि जब जिहाद करना कौमें छोड़ देती हैं तो दुश्मन आते हैं और वो ईंट से ईंट बजा के ले जाते हैं सबको, और फिर उसके बाद एक बंदा कोशिश भी करे तो नहीं बच सकता। फिर इसी तरह देखिए कि फितने का लफ्ज़ जो है ये औलाद और माल के लिए भी आता है, तो यहाँ इन दोनों का आप खूबसूरत रब देख लीजिए कि जब दीन को आम नहीं करते ना तो औलादे नेमत की बजाय फितना बन जाती है, माल नेमत की बजाय फितना बन जाता है। एक सिस्टर की बात जहन में आ गई, कुरान की क्लास में आते आते रुक गई, जब बात हुई तो मैंने पूछा क्या हुआ आपके साथ, तो कहने लगी कि मेरे साथ वही हुआ जो कुरान कहता है। मैंने कहा क्या? कहने लगी माल और औलाद फितना, इस वक्त मैं माल और औलाद के फितने में आ गई हूँ, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और उस पैसों और जॉब की कोई कहानी थी कुछ, इसलिए मैं अब कोर्स नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बच्चों को भी तो खुश करना है। ये फितने आपने देखा, पहले फितने के बाद सारे फितने। औलादे नाफरमान कब होती हैं? जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं हुआ, तो सिर्फ अमर बिल मारूफ की डोरी काट दें तो जिहाद के फितने, सैलाबों के फितने जो अल्लाह का गज़ब होता है गुनाहों पे, औलादों के फितने, माल के फितने, बीमारियों के फितने इतने आ जाते हैं कि फिर आपस में भी एक दूसरे का हक नहीं दे सकते, और नतीजा क्या होता है कि इंसान फिर कुछ सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए अब अल्लाह ताला अगली आयतों में फरमाते हैं, देखिए अगली आयत को, आयत नंबर 26, वस्कुरु इस अंतुम कलीलुन, और याद करो जब तुम थोड़े थे। किसको कहा जा रहा है? मक्का वालों को भी कहा जा रहा है और आज हमें भी कहा जा रहा है। एक वक्त था कि सिर्फ चंद लोग थे मक्का में, थोड़े थे, मुस्तदअफून फिल अर्दी, कमजोर जाने जाते थे जमीन में। यहाँ फिल अर्द से क्या मुराद है टैक्स के एतबार से? मक्का। कि याद करो तुम मक्का में कितने थोड़े थे, तखाफून यतखत्तफकुमुन नास, और तुम इस बात से डरते थे कि उचक लेंगे तुमको लोग। ईमान लाते थे तो छुपना पड़ता था कि हाय कोई आ ना जाए, कोई हाथ ना पकड़ ले, कोई कुछ कर ना दे, तुम्हें अपना दीन छुपाना पड़ता था, कमजोर समझे जाते थे। फिर क्या हुआ? फआवाकुम, फिर उसने तुमको ठिकाना दिया, मक्का से निकाल कर मदीना में ले आया। वाई यदकुम बिनसरी ही, और कुव्वत दी तुमको अपनी मदद के साथ। मवाखाते मदीना हुई, तुम्हारे हाथ पकड़े गए, तुम अमन सुकून से रहने लगे, तुम्हें अल्लाह ने कुव्वत दी। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और रिस्क दिया तुमको पाकीज़ा में से। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि शुक्र अदा करो। क्यों बदर के मार्के को मुश्किल कर रहे हो? क्यों अब जिहाद का मौका आया है तो फिक्र में पड़ गए हो, कैसे लगता है कि मौत की तरफ जा रहे हैं? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, थोड़ों से ज़्यादा कर दिया अल्लाह ने, और अब तुम्हें कुव्वत भी दी, ताकत भी दी। कल तक मक्का वालों से डरते थे, आज तुम उनसे 500 मील दूर चले गए या उससे भी कमो बेश। जब अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ कर दिया तो फिर तुम शुक्र करो। क्या पता चला कि जब कोई तहरीक अपने आगाज़ में कमज़ोर होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ताकत दे देता है, अल्लाह की ज़ात जो है इंसान को वसाइल दे देती है, असबाब दे देती है, तो उस वक्त इंसान को वो बुरे दिन याद रखने चाहिए। उस वक्त इंसान को फिक्र करनी चाहिए इस बात की कि मैंने वो दिनों को भुलाना नहीं। अब देखिए, एक शख्स होता है, शुरू से गुर्बत थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जमा हुआ, अल्लाह ने बहुत दिया, तो उस वक्त फिर उसकी कैफियत क्या होती है? शुक्रगुजारी की कि ना शुक्री की? वो मिसाल याद करें जो गंजे और अंधे और कोड़ी वाली थी, एक बुखारी की रिवायत में हमने पीछे पढ़ी थी। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा अच्छे दिनों में मुश्किल वक्त को भूलता नहीं है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। हम अपने आप को भी देख लेते हैं, जब पाकिस्तान बना था तो कितनी आबादी थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक़्त कितने फितने थे, होंगे कि नहीं, या हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ही जानता है। हम उस वक़्त तो नहीं थे, लेकिन जो किताबों में पढ़ा, जो सुना, वो एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जब अल्लाह ने मुसलमानों को ज़्यादा किया, एक जगह दी, फिर मुसलमानों ने क्या किया? क्या उस वक्त फिर एक मुसलमान उस नेमत को याद करता है? क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन सारे फितनों पर बंद बांध चुके हम? ज़रूरत है इस बात की कि इंसान फिक्र करे, सोचे, गौर करे। कोई भी इस वक्त अगर हम इसको फिर कहेंगे कि अपने हाल पे भी ले लेते हैं, तो इस वक्त सिर्फ मैं और आप अपनी इस क्लास को ही देख लें। मैं सोच रही थी कि अगर हम सिर्फ पीछे तकरीबन एक साल, सवा साल पीछे जाके देख लें, हाँ, और आज अल्लाह ताला ने आपको जो मौका दिया और जितने पुरसकून माहौल में आप बैठे हैं, क्या हमारे ऊपर ये बात नहीं आती? और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये बात और खुल के आपके सामने आती जाएगी। अगर हम अल्लाह के हुक्मों पे चलते रहे और अल्लाह की रज़ा पे काम करते रहे ना, तो आप अगर इस वक्त तक अपने आप को अगर किसी मुश्किल में समझें या आपको कोई कमी बेशी भी लगे, तो उस वक्त ये सोचा करें, कोई बात नहीं, मुस्तदफ होना है। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला दीन का रिवाज होगा। क्या अगर इसको ओवरऑल पूरे मुस्लिम माशरे के ऊपर देख लें, तब भी याद फिट होती है। आज भी देखिए, आज इस्लाम का वो दौर है कि जो दीन पे आता है ना, वो मुस्तदफ बन जाता है। तखाफ होना या तखत्तफकुम अन्नास, दीनी गेटअप के साथ कहीं जाता है तो खौफ आ रहा होता है। अपने घरों, अपने ख़ानदानों, अपने रिश्तेदारों के अंदर इंसान परेशान हुआ होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसके बाद फिर इंसान माहौल बन जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा जो गोल है, हमारा जो हदफ है, वो ये है कि हमने इस्लाम को ग्लैमराइज करना है। लोग मुसलमान होने के बाद अपने आप को मुस्तदफ ना समझें, रहम ना खाएं, सिली फीलिंग, पिटी फीलिंग ना हो उनकी कि हम बड़े बेवकूफ़ लग रहे हैं, देखो मासी लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, बल्कि वो वक्त लाना है कि जब इस्लाम लोगों की नज़रों में आएगा, जिस वक्त मुसलमान होना फैशन बन जाएगा, ट्रेंड बनेगा, लोग फ़ख्र के साथ इस्लाम पे काम करेंगे। तो फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनसरिही, ये भी है कि दीन का रिवाज हो जाए अपने ख़ानदानों में। तो आप देख सकते हैं, अगर इस वक्त आप शुरू में अकेली हैं ना, दो चार साल बाद देखिएगा, आपकी खालाएँ, आपकी फूफियाँ, आपकी बहनें आपके साथ लग जाएंगी। फिर आपकी ये जो मुस्तदफ होने वाली बात है, और कोई शादी आ जाए तो रोना पड़ जाता है घर में कि अब ये नई बात ही सुन के आ गई है, मैं ये नहीं वो नहीं करूँगी, ये सारी कैफियात छूट जाती हैं। लेकिन इन सब के बाद जो अल्लाह का वादा होता है, अल्लाह की जो तलब है बंदे से, या अल्लाह ताला का जो मुतालबा है, वो कह के लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करो। और यही शुक्र इंसान को इस काबिल करता है कि वो अल्लाह ताला के बाकी मामलात को भी निभा सके। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे। जी, ये इनका सवाल जो 25 आयत में है कि खास तौर पे उनको नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि फिर जब अल्लाह की पकड़ आती है ऐसे हालात में, तो सिर्फ उसमें वही लोग नहीं पकड़े जाते जिन्होंने जुल्म किया, बल्कि बिल्कुल ये वही बात है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, और कोई बात?
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون